छह डाला ग्रंथ है पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित। इस पर इसकी दूसरी ढाल पर हम लोगों ने नाथ की ओर चर्चा करी थी। नाथ इसका फर्स्ट हाफ वी टुक इट एज अग्रहित मिथ्यात्व, जिसको ही डिड नॉट लाइक वी डिड नॉट डेवलप समथिंग वेरी न्यू, और जस्ट बिकॉज बाय द वर्च्यू ऑफ टेकिंग बर्थ इन मनुष्य गति, तो वो कुछ नया नहीं था। अग्रहित मिथ्यात्व हमेशा से हमारे साथ था, जो लाइक समय सार में हम लोग बोलते हैं काम भोग बंधन की कथा, इसके संस्कार। तो ऐसे ही जैसे कि व्हेन अ बॉय और अ गर्ल ही टेक्स बर्थ, और व्हेन अ लाइक कोई एनिमल का जन्म होता है, कोई छोटा सा कीड़ा बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इफ एक जन्म लेता है समोचन जीव, या फिर नारकी, या फिर कोई देव, कोई भी जीव हो, उसमें क्षुधा मतलब भूख लगना, उसमें प्यास लगना, उसमें व्याधियां या कोई ऐसी आकुलता, ये सब अपने आप आती है। नोबडी टीचेस, उनको कोई सिखाता नहीं। एक छोटे से बच्चे को बोलना तो आपको शायद सिखाना पड़े, चलना आपको शायद सिखाना पड़े, बट उसको भूख लगती है तो ऑटोमेटिकली वो क्राई करता है, रोने लगता है, राइट? ऐसे ही देव गति का कोई देव हो, अब वहां पर ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है कि वहां सहयोग बहुत ऐसे खराब वगैरह हो, बट स्टिल खुश होने का, दूसरे के वैभव को देखकर इसकी भी आंखें बड़ी हो जाती हैं, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी मोर लाइक, मेरे पास इतना वैभव क्यों नहीं है। तो ये वाली जो इच्छाएं हैं, दीज डिजायर्स, ये ऑटोमेटिकली इनहेरेंटली हमारे पास आती है। ये अग्रहित मिथ्यात्व का कमाल है, विच वी हैव नॉट न्यूली गेन्ड, इट हैज बीन देयर विद अस फॉर लॉन्ग टाइम नाउ, ठीक है? एंड दिस इज वेरी वेरी डेंजरस काइंड ऑफ मिथ्यात्व, विच वी डू नॉट लाइक। हम लोग को यदि कोई गुस्सा करेगा तो हमको पाप जैसा लग जाएगा। इफ समबडी इज डूइंग हिंसा, इफ समबडी इज लाइंग, इफ समबडी इज स्टीलिंग, ये सब हमको पाप लगते हैं। बट इफ समबडी इज सेइंग दैट ओके आई वॉन्ट गुड लक, तो हमको वो कोई पाप करता हुआ नहीं दिखता। ही इज विशिंग फॉर ही इज वेल विशिंग फॉर हिमसेल्फ, ठीक है, कुछ उसने गलत नहीं किया। बट एक्चुअली वॉट ही डिड, ही ट्राइड टू डू आश्रम तत्व संबंधी भूल, ही ट्राइड टू हैव निर्जरा तत्व संबंधी भूल,
क्यों ने
उसने
गुजरात
अपनी।
बोले इंग्लिश में मैंने
हाँ
नहीं जाए इतने माटे कहूँ छू।
ओके 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 ठीक, हिंदी चलेगी आपको?
हाँ हिंदी चलेगा, हिंदी चलेगा,
यहाँ पर कोई जिसको हिंदी नहीं चलेगी,
ना
इंग्लिश
हिंदी
में
चलेगा,
चलेगा।
गुजराती चलेगा और इंग्लिश
ओके
है।
ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी। तो हमारे साथ ऐसा ऐसा हमेशा होता है, मतलब हम लोग के जो पांच पाप हमने पढ़े, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो मानस आप देखोगे, यदि कोई झूठ बोलता है तो दुनिया में सब उसको, लाइक नॉट ओनली जैन, जैन लोग भी नहीं, अजैन के यहाँ भी यदि कोई झूठ बोलेगा उसको सब टोकेंगे। चोर वो जैन के यहाँ हो या अजैन के यहाँ हो, कोई भी चोर हो, एवरीबडी कंसिडर, मतलब सब कुछ बोल, सब हर कोई बोलेगा कि यार ये नहीं करना चाहिए, चोरी आप मत करो, हर कोई टोकेगा। बट
बराबर
यदि आप उसी टाइम पर राग द्वेष करोगे, आप किसी पर थोड़ा सा गुस्सा हो लिए, या फिर आपने बोला कि नहीं मुझको एक अच्छा सा घर चाहिए, तो आपने एक्चुअली एक इच्छा करी, या आपको बहुत बुरा पाप का उदय आया और आपने बोला पाप का उदय चला जाए, ऐसा आपने कुछ थोड़ा थोड़ा, हम अलग तरीके से अपनी इच्छाएं करते हैं, इन इच्छाओं को करने से कोई नहीं रोकेगा हमको, और बल्कि चार लोग आएंगे और हम हमारे लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट, आपका सब अच्छा हो, सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसी विशेष देकर और हमारे साथ चले जाएंगे हमारे सामने से। तो इस दुनिया में इट्स लाइक एक बहुत बड़ा जाल है, ये कॉन्स्पिरेसी हम इसको कह सकते हैं, क्या कि जो हमारे छोटे पाप थे, जो छोटे पाप थे, लाइक हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीले बहुत छोटे पाप हैं, इनको तो सब टोकते हैं, इनसे तो हमें बचाने का उपदेश सब देते हैं, बट जो बड़ा पाप मिथ्यात्व का है उसके लिए नोबडी, कोई हमको कभी नहीं टोकता। बट एक्चुअली फंक्शन क्या है, यदि हम मिथ्यात्व को छोड़ेंगे तो ये छोटे पाप तो अपने आप चले ही जाने वाले हैं, बट हम मिथ्यात्व को रखेंगे और इन छोटे पापों को छोड़ते रहेंगे तो आज वी आर लकी कि हम लोग ऐसे अच्छे परिवेश में आए, कल को हमारा मरण हुआ और हम किसी और गति में गए, वहां पर तो कोई हमको ऐसा सिखाने वाला नहीं मिलेगा, तब फिर हम आज नहीं तो कल हम हिंसा करेंगे। जैसे कि यदि मैं सिरेंच हुआ यहाँ से मरकर मान लीजिए, और मैं सिरेंच में आई हैपन टू बी अ सियार, ठीक है, एक कोई भी मैं मांसाहारी पशु हो गया, नाउ नोबडी विल टेल मी, कोई बोलेगा नहीं कि तुम शिकार नहीं करो, तो मैंने तो अभी बहुत हिंसा का त्याग किया था और अब सडनली मैंने हिंसा का यहाँ इतना त्याग किया और अब मैं अगले भाव में हिंसा ही से अपना पेट भर रहा हूँ, तो ये ऐसा क्यों हुआ? मेरे पूरे जीवन की तपस्या हिंसा को छोड़ना कहाँ गया? कि चूंकि मैंने मिथ्यात्व को नहीं छोड़ा था जो कि बड़ा पाप था, तो मेरे छोटे पाप हिंसा ये थोड़े टाइम के लिए तो खत्म हो गए, बट सडनली द मोमेंट हमको ये लगा कि वापस आ सकते थे, चिंता झूठ चोरी खुशी अपने आप बाहर आ गए। ऐसा आदिनाथ भगवान के टाइम हुआ था। आदिनाथ मुनिराज ने नीलांजना का नृत्य देखा, राइट? आपको पता है आदिनाथ भगवान को कैसे वैराग्य हुआ? मानस आप लोग को स्टोरी पता है कि नहीं पता है? मानस आदिनाथ भगवान थे, तो आदिनाथ राजा आदिनाथ, राइट? वो उनकी एज कितनी थी?
मुझे याद नहीं है।
ओके, उनकी एज थी कितनी एज थी, किसी को याद है आदिनाथ भगवान की टोटल एज?
84 लाख।
यस, 84 लाख, 84 लाख पूर्व। उसमें से आउट ऑफ 84 लाख, ओके, उनकी 83 लाख पूर्व तक की आयु तक वो राजा बने रहे। मतलब उनकी आयु, मतलब लाइक 84 इयर्स के जब उनकी आयु माने तो 83 साल, मतलब ओल्ड एज, ओके, मेरी यदि 84 इयर्स की एज है और मैं 83 इयर्स तक मैंने दीक्षा नहीं ली है, मेरा एक साल सिर्फ बाकी है, ऐसा उनके पास 84 लाख की उनकी आयु थी और 83 लाख, 84 लाख पूर्व तक उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी। तो फिर वो एक बार अपने दरबार में बैठे थे और वहां पर स्वर्ग से नीलांजना आई हुई थी और उनका नृत्य चल रहा था, ठीक है, एंड सडनली उनकी वहां मृत्यु हो गई, वो नीलांजना खत्म हो गए, उनकी एज डांस करते करते ही, हाँ, सो लाइक सौधर्मेंद्र वहां पर था, मतलब देव थे, उनको लगा भाई यहाँ पर तीर्थंकर की सभा चल रही है, यहाँ पर ऐसे कैसे गड़बड़ हो जाएगी, तो तुरंत, वो तो देव थे, तो उन्होंने तुरंत उसका जो, जैसी वो मरी तुरंत उसकी बॉडी को हटाया, देवों का शरीर होता है वैसे ही, तो वो वहां पर तुरंत खत्म हुआ और वैसे ही उसके शरीर जैसे दिखने वाली दूसरी देवी वहां पर डांस करने लगी, तो लाइक नॉर्मल लोगों को तो पता ही नहीं पड़ा कि वहां पर किसी की डेथ हुई है और रिप्लेस हुआ है कोई, बट इनका ज्ञान बहुत सूक्ष्म था, आदि कुमार का, ऋषभ देव का, तो ही कुड सी, उन्होंने देखा कि यार ये क्या हो गया, और उनको अचानक से वैराग्य हुआ कि देखो, एक तो उसके नृत्य करते करते जीवन का अंत हो गया और देखो हम लोगों के विघ्न में बाधा नहीं हो, हम लोगों के मनोरंजन में बाधा नहीं हो, इसके लिए सामने किसी जीव का मरण भी हो जाए तो भी देखो इन लोगों को किसी को भी शांति, इनके परिणाम कैसे है, मतलब हम लोग के मनोरंजन कैसा है, हम दूसरे जीवों के प्रति संवेदना तक नहीं दे पाते, राइट? तो उनको बहुत वैराग्य हुआ और उन्होंने दीक्षा ली, तो बड़े राजा थे वो, तो बहुत बड़े राजा थे, सो उन्होंने दीक्षा ली तो छोटे राजाओं को भी लगा भैया हमारे राजा दीक्षा ले रहे हैं तो हमको भी दीक्षा लेनी चाहिए। अब इनमें से किसी को पता नहीं पड़ा कुछ कि क्यों दीक्षा ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, बट आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने उनके साथ दीक्षा ले ली। अब दीक्षा ली तो आदिनाथ मुनिराज तो ध्यान में बैठ गए, अब वो ध्यान में बैठे तो ऐसे बैठे कि उनको तो कुछ खबर ही नहीं, उनको ना खाने की पड़ी ना पीने की पड़ी, वो अपने ध्यान में बैठे, ठीक है। अब एक दिन हुआ, दो दिन हुए, तीन दिन हुए, चार दिन हुए, एक हफ्ते हुए, ये वाले बाकी के मुनिराज भी देखे यार, अब तो भूख लग रही है, और ये आदिनाथ मुनिराज तो नाम ही नहीं ले रहे हिलने का, तो इनको धीरे धीरे अब कहाँ तक भूख सहन करेगा कोई? वैराग्य तो सच्चा है नहीं, मुनिपंथ का ज्ञान नहीं सच्चा क्या होता है। तो दे स्टार्टेड ईटिंग पेड़ पौधों से फूल फल ये सब ऐसे धीरे धीरे, और वो लोग भ्रष्ट हो गए, राइट? सो नाउ माय क्वेश्चन इज कि वो लोग भ्रष्ट क्यों हुए, व्हाट वाज द रीजन? उन्होंने जब आदिनाथ मुनिराज के साथ दीक्षा ली थी तो डिड दे नॉट टेक ऑल द वोज, उन्होंने सारे नियम नहीं लिए थे क्या? लिए थे, उन्होंने भी मुनिराज आदिनाथ जैसी दीक्षा नहीं ली थी क्या? ली हुई थी, करेक्ट।
खाली आदिनाथ का रिस्पेक्ट किया था ने, उसका मन में वैराग्य नहीं आया था,
बट उन्होंने नियम तो लिए थे। फिर ये नियम कैसे टूट गए, क्यों टूट गए, कारण क्या रहा?
हाँ, वो कारण ये रहा कि वैराग्य नहीं था,
करेक्ट। मतलब जो मूल कारण था मुनि दीक्षा लेने का, वो मूल कारण तो था ही नहीं, तो उसके साथ जो सेकेंडरी कारण थे, ये पंच महाव्रत हो गए, नग्न दशा हो गई, दिन में एक बार खाना हो गया, ये वाले थोड़े टाइम तो रहे बट हमेशा नहीं रह पाए। ऐसे ही हमारे साथ है, हमारा मूल अग्रहित मिथ्यात्व तो नहीं छूटता, हम मिथ्यात्व को तो नहीं छोड़ते, हिंसा झूठ चोरी करना छोड़ देते हैं, सात व्यसन को करना छोड़ दिया, रात में खाना छोड़ दिया, पानी छान कर पीने लगे, ये छोटे छोटे नियम तो हमने ले लिए, बट जो मेन इनका, जैसे वहां पर मेन वैराग्य था, मेन यथार्थ ज्ञान था, वो नहीं था, तो फिर उनका वो बाकी के नियम भी कितने दिन चल पाए? थोड़े दिन चल पाए।
हमारे
नियम भी बहुत थोड़े दिन चलने वाले, राइट? तो फर्स्ट सेकंड ढाल में पंडित दौलत राम जी ने क्या उपदेश दिया कि सबसे पहले आप क्या करो, अपने ग्रहित मिथ्यात्व पर काम करना चालू, अग्रहित मिथ्यात्व पर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको ये सात तत्वों का ज्ञान करना है, और सात तत्वों के संबंध में जो आपकी गलतियां हो रही है, लाइक आप आईने में देखकर अपने शरीर को बहुत खुश होते हो और आपको एक सेकंड भी याद नहीं आता कि शरीर में नहीं हूं, मैं तो उसको देखने वाला जीव हूँ, तो ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है आपको,
तो
ऐसा लगता है कि राइट आपका भेद विज्ञान नहीं है, आपका राग द्वेष के प्रति ऐसा परिणाम है, तो ये आप ऐसा तो ज्ञान नहीं करते, और छोटे छोटे आपकी सहूलियत से आपको जो लगा कि हाँ चलो मैं रात में नहीं खा सकता, मैं 12 घंटे नहीं खाएंगे, इट्स ओके, इतना
लग जाते हैं खाली,
तो आपको इजी लगा तो आपने कर लिया, तो ये तो बड़ा वो चीटिंग टाइप्स हो गई। जैसे कि एक बच्चा है स्कूल का, वो वाला होमवर्क तो कर ले जो कि उसको मजा आता है, उसको पेंटिंग ड्राइंग में मजा आता है, तो ड्राइंग वाले पीरियड में जो उसको वर्कबुक फिल करने मिली उसने वो तो कर ली, बट मैथमेटिक्स और साइंस का उसने होमवर्क ही नहीं किया। Why didn't he do it? Because he didn't like it. उसको अच्छा नहीं लगा, उसको करते ही नहीं आता था, तो इससे उसका घाटा ही होगा ना, लाइक आर्ट अकेली पढ़ने से वो पास तो नहीं हो जाएगा। ऐसे ही हमने भी जो हमें अच्छा लगा, हमसे छोटे छोटे पाप छूटते थे, तो हमने और रात में खाना छोड़ दिया, हम
लगे
और हम एकदम मस्त हो गए कि हम तो जैन है भैया, हम तो सब कर रहे हैं जो करना चाहिए।
हमने
तो दौलत राम जी कहते हैं कि बहुत गड़बड़ हो गई, आप बहुत बड़े एक जाल में फंस गए, आपको लग रहा है कि आप अच्छा कर रहे हो, तो आपको ये संतुष्टि आ गई, यू आर सेल्फ सेटिस्फाइड, ठीक है आई एम डूइंग इनफ, और आप इनफ कर रहे हो, ये वाली फीलिंग जो आ गई, तो आप मिथ्यात्व को खाड़ने का, उसको खत्म करने का प्रयत्न ही नहीं करते, और जब वो प्रयत्न नहीं करते तो आपकी 4 दिन की जो लाइफ है ये ऐसी आराम से चली जाती है, और इसके बाद जो मिथ्यात्व का फिर वो भयंकर पांडव नृत्य शुरू होता है अन्य गतियों में, वो हमको भुगतना पड़ता है, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहला स्टेप क्या बताया था दौलत राम जी ने, ये चार गतियों के दुखों से छूटना हो तो सात तत्व, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिनमाही विपर्यस्त, आपको समझना है, और समझकर समझने तक ही नहीं, इनकी श्रद्धा करनी है, प्रतीति
श्रद्धा करके छोड़ना है,
ठीक है? यहाँ तक का क्लियर था ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व का। अब इस अग्रहित मिथ्यात्व के कारण इस काल में एक प्रॉब्लम और आई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, ये हर काल में नहीं होती, इसको बोला ग्रहित मिथ्यात्व। क्या बोला? जैसे इस काल को हुंडाक सर्पिणी काल बोलते हैं ना, ये आदिनाथ भगवान के ही टाइम, ये सब लोग इनके ही कच्छ महाकच्छ देश के राजा इनके साथ जो दीक्षित हुए थे, फिर एक आकाशवाणी इनको भ्रष्ट होता हुआ देखकर इन देवों ने बोला कि देखो यदि तुम लोग को ऐसे गंदे काम करने हैं तो जैन मुनिराज के वेश में नहीं कर सकते क्योंकि तुम उस पद को मलिन कर रहे हो, तो तुम इस वेश को बदल लो या फिर अपने घर वापस चले जाओ। तो कई लोगों को डर लगा कि हम लोग घर वापस चले जाएंगे तो राजा भरत वो बोलेगा कि हमारे पापा को तुम ऐसा जंगल में छोड़ के आ गए, अब उनको क्या पता कि उनके पापा तो तीन लोग के नाते, बट उनको डर था ना राजा भरत का, वो चक्रवर्ती थे तो वो लोग घर भी वापस नहीं जा पाए। डरा के था नहीं, देवों ने डरा दिया कि तुम मुनि देश में ऐसे काम नहीं कर सकते और वापस अपने घर नहीं जा सकते। तो उन्होंने फिर अपने अपने वेश बना लिए, किसी ने सफेद कपड़े पहन लिए, किसी ने लाल कपड़े पहन लिए, ऐसे कापालिक चारवाक इत्यादि अनेक मत चले,
देखा देखी
परम ले, देखा देखी नए नए मार्ग चलने लगे। ठीक है, ये वाले मार्ग एक्चुअल में पूरा मिथ्या के कारण चले थे, इसलिए इनको बोलते हैं गृहित मिथ्या। तो इन मार्ग को, इन मार्गों पर चलना जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं। हाँ सॉरी, यह क्वेश्चन क्या है
अनुभव जी? मुझे यहाँ एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि ये यूजुअली तो जो दीक्षा लेते हैं तो वो उसके जो गुरु होते कोई आचार्य के उसके पास दीक्षा देते हैं, तो अभी ये तीर्थंकर भगवान के टाइम में कैसा होता है? अभी तीर्थंकर ये तो ऋषभ देव ने तो खुद अपने कोई उसके तीर्थंकर के तो गुरु नहीं होते तो वो खुद ही दीक्षा लेते, तो ये दूसरों को फिर दीक्षा देने वाले आदिनाथ भगवान होएंगे कि उनको पता नहीं होएगा कि ये इनों को कुछ आत्मज्ञान तो है नहीं, तो कभी ऐसा कब कैसा वो प्रोसेस होता है तीर्थंकर के टाइम पर?
लेकिन उस टाइम तो क्या था, उस टाइम तो किसी की दीक्षा नहीं थी, चौथा काल शुरू ही हुआ था, राइट? वो तो शुरू भी नहीं हुआ था तब, ऐसा होता है। कुलकर्णी से कल्प वृक्ष खत्म होने लगे थे सब कुछ, तो इन्होंने फिर आदिनाथ मुनिराज ने असी मसी कृषि इत्यादि का उपदेश दिया, ये सारे काम किए, राइट? इतना सब करके उन्होंने जो कुछ भी वैसा किया। अब नाउ ये दीक्षा लेने के लिए आदिनाथ मुनिराज को दीक्षा लेना था, और तीर्थंकरों के साथ क्या होता है कि तीर्थंकर जब तक वो केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं करते तब तक उपदेश नहीं देते,
बराबर?
ठीक है, वो दीक्षा भी नहीं देते, कुछ नहीं देते, वो सिर्फ ओम नमः सिद्धेभ्यः बोलते हैं और खुद की दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। उनको देखा देखी जब कोई वहां पर मुनिराज नहीं होते तो आज्ञा से, मतलब उनको साक्षी मानकर और भी राजा लोग दीक्षा ले लेते हैं। ठीक है, वो आज्ञा से हुआ। अब उनमें से कई लोग टिके, कई लोग उनके जैसा भी चले, लेकिन बाकी ऐसा नहीं होता कि वो तीर्थंकर का के मुनिराज वो आचार्य बन जाएंगे और फिर वो सबको सिखाएंगे, संघ चलाएंगे, इतने सारे मुनिराजों को देखेंगे, ये वो नहीं करते वहां पर। तो तभी आदि में तो ऐसी ऐसी जैसे स्टार्टिंग में कोई व्यवस्था बनती तो उसमें थोड़ा नया नया ऐसे एक्सपेरिमेंट चलते, तो नई नई दीक्षा हुई उस समय, उसे लोगों ने देखा देखी लिया, और फिर बाद में स्वप्न आएगा राजा श्रेयांश को और आदिनाथ मुनिराज का आहार होगा, और फिर ऐसे मुनि मार्ग प्रशस्त होगा और गृहस्थ मार्ग प्रशस्त होगा। जब तक राजा श्रेयांश ने आहार नहीं दिया है तब तक तो ना गृहस्थों को पता है क्या करना है, ना मुनियों को पता है क्या करना है। इसके लिए अक्षय तृतीया को अपनी ज्योतिष शास्त्र में एक्चुअली बहुत बड़ा दिन मानते हैं। आपको पता है अक्षय तृतीया हिंदू लोग भी बहुत अच्छे से मनाते हैं, इस दिन बहुत सारे सामान भी वो लोग खरीदते हैं। अक्षय तृतीया इज लाइक वेरी बिग फेस्टिवल, ऐसी अपना एक ग्रंथ है ज्योतिष का, उसमें यंत्र बनाकर आपका पूरा शरीर के लक्षण देखकर और निमित्त ज्ञान से और पूरी रचना की जा सकती है, मतलब सब बताया जा सकता है। तो मैं आज के दिन का कलर देखकर बता दूंगा कि आज क्या होने वाला है, ऐसा करके वो ग्रंथ है। ओके, उस ग्रंथ में पता है सारी गणनाओं का, सारी कैलकुलेशंस का बेसिस कौन सा डे है? ये अक्षय तृतीया का दिन। दिस डे सो नोबल, ये वाला डे एक्चुअली कैलेंडर वाइज भी, हिंदू कैलेंडर वाइज भी, ये अक्षय तृतीया मतलब अक्षय, इट्स लाइक त्रैकालिक एटर्नल तृतीया, ये एक एक्चुअली
होने वाला,
हाँ ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो इस दिन क्या हुआ, मुनिराज आदिनाथ का पहला आहार हुआ। इसके पहले वो आहार चर्या के लिए निकलते थे, लोग समझते थे पता नहीं है क्यों आ गए यहाँ पर, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो कोई सोना चांदी लेकर खड़ा हो जाता था, कोई अपनी बेटियों को लेकर के चलो मुनिराज आएंगे हम उनके साथ इनकी शादी करा देंगे, कोई अपना राज्य देने को तैयार हो जाता था, कोई वाहन देने को, कोई गाड़ी देने को, बट वो तो मुनिराज थे उनको क्या करना, बट किसी को समझ नहीं आता था। तो इन लोग को पता नहीं था कि क्यों आते हैं रोज और हमें क्या करना। करेक्ट। तो नाउ अब क्या हुआ, जब श्रेयांत राजा को स्वप्न आया कि भैया ये मुनिराज आहार के लिए आते हैं, आहार की विधि ऐसी होती है, करेक्ट, तब उन्होंने आहार दिया, मुनिराज ने योग्य विधि से आहार लिया, तब सबको पता पड़ा कि भैया श्रावकों का काम आहार देना, मुख्य मार्ग में चलने वाले जीवों की स्थिति करना है, और मुनिराजों का काम योग्य चर्या के हिसाब से अपने आत्महित में लगना है। ठीक है, तो अभी जब इनने दीक्षा ली थी तब तक तो किसी को श्रावकों को नहीं पता था कि वो क्या करेंगे, तो मुनिराजों को तो क्या बताएं। ठीक है, तो वो तो उस टाइम तो देखा देखी हुई जो दीक्षाएं वगैरह हुई।
अच्छा हाँ, नहीं थैंक यू। और मुझे एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पूछ सकती हूँ, एकदम रिलेटेड है। हाँ, क्योंकि आज हम मंदिर में भरत भगवान की पूजा कर रहे थे, तो वहाँ जयमाला में आया कि उन्होंने गुरु के बिना दीक्षा ली, तो वो मुझे थोड़ा वो आश्चर्यजनक लगा, क्योंकि यूजुअली तो तीर्थंकर ही गुरु के बिना दीक्षा लेते हैं। तो
नहीं ऐसा, जैसे कि क्या हुआ, अपना इंडिया में क्या चला, इंडिया में अपनी जैन धर्म चलता था, राइट। सो आप यदि पास 2000 ईयर से हिस्ट्री देखो, तो अपनी 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं शताब्दी तक, 13th century 14th century तक तो मुनिराजों के दिखते हैं, लाइक 12वीं शताब्दी में ऐसे कि इतने सारे हमारे मुनिराजों के ग्रंथ भी मिलते हैं, अपने अकलंकाचार्य, अकलंक देवाचार्य हुए, अमृतचंद्राचार्य जी हुए, 10वीं शताब्दी में ऐसे कर अलग अलग हुए, करेक्ट हुए। इसके बाद फिर हम लोगों के बीच में यहाँ पर फिर वो मुगल आ गए, मुस्लिम लोगों का आक्रमण हुआ, राइट, मोहम्मद गजनवी से स्टार्ट हुआ, तो हिंदू राजा चले गए, मुस्लिम राजा आए, और फिर अपने मंदिर टूटने लगे। तो बीच में एक बहुत बड़ा गैप था, लाइक जब पंडित टोडरमल जी वगैरह हुए उस टाइम भी जैन मुनिराज नहीं होते थे, राइट, उनके ग्रंथों से पता पड़ता है। ठीक है, तो ये आखिरी में यही वाले मुनिराजों की परंपरा मिलती है, विद्यानंदी आचार्य इन लोगों की, जो मूल अपनी शिव परंपरा में जिन्होंने हुए, बहुत सारे होंगे लेकिन जिनके ग्रंथ उपलब्ध है, जिनके बारे में हमको इतिहास जैसे पता पड़ता है। तो लाइक अभी 200-300 साल तक कोई मुनिराज नहीं हो रहे, ठीक है, अब आज मुझे जिन दीक्षा लेनी है, 200 साल हो गए अभी कोई मुनिराज नहीं हुआ है, इज इट पॉसिबल फॉर मी टू हैव अ गुरु?
नो नो,
लेकिन मोक्ष मार्ग तो चलेगा, तो दीक्षाएं तो होंगी, मुनिराज तो होंगे। तो ऐसे में जैसे कि अभी हम लोग नियम लेते हैं, हम लोग के पास गुरु नहीं है तो हम लोग जिन प्रतिमा की साक्षी में जाके ले लेते हैं,
बराबर
ऐसे ही वे मुनिराज यदि समझे, योग्य अभ्यास करें और उनको दृढ़ता हो, तो कोई ऐसे परम तेजस्वी मुनिराज अपनी साक्षी में, जिन वाणी की, जिन प्रतिमा की साक्षी में जिन दीक्षा ले सकते हैं। उसमें ये विधान नहीं है कि आपको जरूरी हो कोई गुरु हो, हाँ सामने आचार्य हो और आप फिर खुद से ले रहे हो, ये गड़बड़ है। लेकिन यदि है ही नहीं तो अब क्या, मैं कोई नहीं है तो मैं ये बहाना लेकर फिर दीक्षा ही लेना बंद कर दूं? नहीं, उससे तो गड़बड़ हो जाएगी, वो किसी परिस्थिति वश इतने बीच मुनिराज नहीं हो पाए, तो अब क्या हुआ, मैं तो चालू हो सकता हूँ मोक्ष मार्ग पर, तो ग्रंथों में पूरी विधि है तो मैं ऐसे करके ले सकता हूँ। सिमिलरली भरत जी तो तद्व मोक्षकामी थे, इतने पुरुषार्थी थे, उनको अब वहां पर जहाँ पर दीक्षा लेने का परिणाम हुआ वहां कोई मुनिराज नहीं होंगे, तो उन्होंने दीक्षा ली, ऐसे
बहुत ही बढ़िया, थैंक यू।
तो नाउ मेन कंटेंशन यहाँ पर ये हुआ कि ये जो अंडाव सर्पिणी काल चला, इसके कारण बहुत सारी विकृतियां आने लगी, नए नए रोज नए मत निकलने लगे, और उसके कारण ऑलरेडी हमारे पास एक ग्रहित मिथ्यात्व था और उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ी वज्र की दीवार खड़ी हो गई, ग्रहित मिथ्यात्व की। और ये अकेली अजैनों में कुमतों में नहीं हुआ, जैनों के भीतर भी बहुत सारा हुआ राइट। और लाइक शांतिनाथ भगवान शांति को देने लगे, शीतलनाथ भगवान शीतलता देने लगे, भगवान के गंधोदक से हमारे रोग मिटने लगे, हमने शांति विधान कर लिया तो एक्चुअल में शांति आने लगी, हमने भक्तांबर का पाठ कर लिया तो हमारे सारे रोग विघ्न खत्म होने लगे। तो छोटे छोटे हमने नए नए तरीके से अपनी उन सात तत्व संबंधी बुरी भावनाओं को, उल्टी भावनाओं को वापस और स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। इसको बोला ग्रहित मिथ्यात्व, इट्स समथिंग जो हमने नया ग्रहण किया, वी न्यूली एक कोई नई चीज हमारे पास। हमें पहले तो हमें पता था कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ, हम इतना मानते थे अग्रहित मिथ्यात्व के कारण। अब ग्रहित मिथ्यात्म ने ये भी बता दिया कि भैया आप भगवान के यदि गंधोदक लगाओगी ना तो आपका शरीर सोने जैसा चमकने लगेगा। तो पहले तो मैं शरीर ही नहीं हूँ, तो लाइक कौन सोने जैसा चमके। ऊपर से इसको शरीर को, अब जब मैं शरीर नहीं था तो अब इसको सुंदर बनाने की बात कहाँ से आ गई। बट उस जीव अजीव तत्व संबंधी भूल को इतना स्ट्रांग बना लिया गया किसके कारण, इस नए ग्रहित मिथ्यात्व के कारण, जिसके कारण फिर हम जो एक ये बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी था मोह राजा की। मैं आपको एक नाटक दिया, मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत प्यारा प्ले। आचार्य वाजी चंद्र सूरी हुए, उन्होंने एक नाटक लिखा, नाटक का नाम है ज्ञान सूर्योदय नाटक। इट्स अ प्ले, इट्स अ प्रॉपर प्ले, इट कैन बी यू नो वेरी ब्यूटीफुली पोर्ट्रेड एंड लाइक वी आर प्लानिंग लाइक इसकी स्क्रिप्ट प्रॉपर तैयार की जाए। इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्ले, बहुत अच्छा प्ले। अब उस नाटक का प्लॉट क्या है, उस नाटक में क्या होता है, आत्मा है, आत्मा राजा है, उसकी दो पत्नियां हैं, एक सुमति एक कुमति, ठीक है। सुमति नाम की पत्नी से उसके प्रबोध, क्षमा, ऐसे करके पुत्र पुत्रियां हुए, सम्यक प्रिय सब सुमति से पुत्री हुई आत्मा के, और कुमति से मिथ्यात्व, अहंकार, मान, दंभ और कलिकाल, ये पांचवा काल है, ऐसे करके ये सारे पुत्र उसके उत्पन्न हुए, ठीक है, पुत्र हुए, मंत्री हुए। अब क्या हुआ, ये जो आत्मा था इसको कुमति ज्यादा पसंद थी, सुमति में इंटरेस्ट नहीं था। तो ये एक बार कुमति के प्यार में, उसके मोह में, इसने प्यार प्यार में क्या कर दिया, मिथ्यात्व आदि को राज्य दे दिया, मेन राज्य, और प्रबोध आदि को भी छोटे मोटे मिल गए, बट पूरे राज्य का स्वामी किसको बना दिया गया, मोह को बना दिया, मोह यानी कि मिथ्यात्व, मोह नाम के बच्चे को। ये किसका बच्चा है, सुमति का। अब ये वाली खबर पता पड़ी प्रबोध आदि को, तो प्रबोध आदि एकदम जल भुन गए, ये क्या कर दिया पिताजी ने भैया, कुछ सोच के तो करते, योग्य बंटवारा करते, बराबर बराबर बांट देते, ये तो गलत हो गया। तो अब इन लोग को लगने लगा कि नहीं दिया, दिक्कत है। यहाँ पर मोह को भी पता है कि प्रबोध आदि को राज्य नहीं मिला है तो लोग शांत तो नहीं बैठेंगे, आक्रमण करने के लिए आएंगे राइट। तो प्रबोध ने अपने मंत्रियों को बुलाया। अब प्रबोध का मंत्री था कलिकाल, कलिकाल मतलब पांचवा काल, अभी का काल है, ठीक है। तो तुरंत ये मंत्री दौड़कर आता है, मोह बताता है भैया देखो ऐसा हो गया, पिताजी ने राज्य तो दे दिया है लेकिन अभी राज्य को अपन परमानेंट कैसे करें, लेकिन हमेशा बना रहे। तो कलिकाल ने बोला इसमें क्या बड़ी बात है, कुछ भी नहीं, आप तुरंत अपनी बेटी हिंसा को बुला के लाओ, उसकी बेटी है हिंसा मोह की, ओके सॉरी नॉट हिंसा, माया, मोह की पत्नी का नाम है माया, आप तुरंत अपनी पत्नी माया को बुलाओ और माया को तुरंत ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भेज दो, और उनकी शरण में वो चली जाएगी तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे पूरे राज्य की रक्षा करने लगेंगे। राइट, आर यू गेटिंग वहां पर जो पैरेललिज्म ड्रॉ कर रहे हैं।
हाँ, हाँ.
एक पंचम काल का मंत्री किसको भेज देता है, हमारी बुद्धि के पास, ये कुदेवों को भेज देता है, जिससे क्या होगा, मिथ्यात्व का जो अग्रहित मिथ्यात्व का राज्य है वो और स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है, जिससे इसके बाहर एक बाउंड्री खींच गई जिसको भेद ही नहीं पाए, ठीक है। तो वो माया को बुलाया जाता है और माया तुरंत जाती है और ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाती है, वो बोलते हैं इसमें क्या है, तुम लोग हमारे पास आओ तो हमें तो, और हमें तो मोह तो हमारा बहुत पुराना मित्र है, और माया माया तुमसे तो हम बने हुए हैं, ब्रह्मा माया से बना है ना, तो ऐसे करके तो बहुत सुंदर डायलॉग्स हैं। अब यहाँ पर प्रबोध को ये बात पता पड़ती है प्रबोध के राज्य में, तो अब इनके राज्य में वापस सब हिल जाते हैं, ये क्या हो गया। तो अब इनका मंत्री होता है विवेक, विवेक बोलता है आप घबराइए, शांति रखिए, आप ऐसा करिए, तुरंत ही आपकी पत्नी क्षमा उसकी पुत्री दया को बुलाइए। किसको बुलाते हैं लोग? दया को। दया को बुलाते हैं और दया आती है। दया से वो बोलता है, विवेक दया देखो अपने ऊपर बहुत गहरी विपत्ति आती है, आक्रमण कभी भी हो सकता है, तो तुम शीघ्रता से अरहंत के चरणों के पास जाओ और वहां पर ये वृत्तांत कहो, वो हमारी मदद करने जरूर आएंगे। तो नाउ अब यहाँ पर क्या किया इसने, वहां पर कुगुरु कुदेश की तरफ लोगों को भेजा जा रहा था, तो तुरंत विवेक ने क्या बोला कि भैया हमारे परिणाम बहुत मलिन हो रहे हैं, पहले तो चित्त में परिणाम शांत हो, मतलब हम दया को लेकर आए। एंड द मोमेंट दया कम, इसको सीधे अरहंत की शरण पर भेज दो। ठीक है, अब अरहंत की शरण पर दया गई और उसने सब बोला, तो अरहंत ने बोला अरे वो प्रबोध, प्रबोध तो हमारा पुराना मित्र है, उस प्रबोध के कारण ही तो हम अरहंत बने, प्रबोध मतलब सम्यक ज्ञान, उसके कारण ही तो हम अरहंत बन पाए, हम उसकी रक्षा करने क्यों नहीं आएंगे, तुम ऐसा करो तुरंत प्रबोध वगैरह सबको हमारी शरण में लेके आ जाओ। तो उसने पूरे के पूरे सब प्रबोध आदि को कहां बुला लिया, अरहंत भगवान ने अपने पास बुला लिया। राइट, अब जब इन सबको ये दया का और अरहंत का गुप्तचरों ने राजा मोह को ये वाली बात सुनाई, तो अब ये लोग थर थर कांपने लगे। उनको पता पड़ा यार ये दया तो अरहंतों के पास पहुंच गई है, और यदि प्रबोध आदि को अरहंतों के पास तक ले जाएगी तो सचमुच गड़बड़ हो जाएगी, ब्रह्मा विष्णु महेश तो अरहंत के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब इनके एकदम गड़बड़ आई, तो वापस कलिकाल को बुलाया गया और कलिकाल से बोला भैया क्या किया जाए, व्हाट शुड वी डू, ये तो गड़बड़ आ गई और अपन तो सही में बहुत ढीले पड़ जाएंगे यदि अरहंत आदि के पास सचमुच चले गए। तो कलिकाल बोलते कोई बात नहीं, हम लोग ऐसा करते हैं, ये जो दया जा रही है अरहंत आदि से उपदेश लेके प्रबोध आदि के पास तक, इस दया को रास्ते में उठवा लेते हैं, इसको किडनैप कर लेते हैं। तो दया को किडनैप कर लेंगे तो ना रहेगी दया, दया नहीं रहेगी तो अरहंत आदि के पास कोई जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि तीव्र कषाई जी सच्चे देव सदगुरु के पास जा ही नहीं पाचा है, और यदि वो अरहंत आदि के पास जा ही नहीं पाएगा तो फिर हमें किस बात की चिंता। सबको एकदम मजा आ गया इस बात पर तो सुन के, तो तुरंत कलिकाल ने हिंसा को बुलाया और हिंसा से बोला जल्दी से दया का अपहरण करके लिया, हिंसा जाती है और दया को किडनैप करके ले आती है। ठीक है, यहाँ तक किस स्टोरी समझ में आई आप लोग को? हेलो,
हाँ, हाँ,
हाँ। अब स्टोरी में ट्विस्ट आता, अब क्या होता है, यहाँ पर दया जब गायब हो गई तो उसके अपहरण के समाचार, आप सबको हिंदी समझ में आ रही है ना, कोई ऐसा तो नहीं जिसको हिंदी में प्रॉब्लम हो रही हो थोड़ी? Everybody is fine with हिंदी?
हिंदी बराबर
ठीक है। हाँ, तो अब क्या हुआ कि ये जो दया थी इसके अपहरण के समाचार इसकी मम्मी के पास पहुंचे, इसकी मम्मी थी क्षमा और दया की एक बहन भी थी, इसका नाम था शांति। क्षमा और शांति ये दोनों पागल हो गए, दहाड़े मार मार के रोने लगी क्षमा, मेरी दया कहाँ गई, मेरी बच्ची बेचारी बच्ची वो तो वहां गई थी अरहंतों के पास और बीच में से ले गए, कौन ले गए हो गया, मैंने तो ये सुना है कि उसको हिंसा उठा के ले गई, मतलब पता नहीं क्या करेंगे मेरी बच्ची के साथ, और ये और वो। तो शांति बोलती है माँ धैर्य से काम लो, चलो दया मार्केट में ही तो घूमी है, हम उसको ढूंढने चलते हैं, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी। तो शांति क्षमा को धैर्य बंधाती है और इन लोग को लेके निकलती है। अब क्या होगा, ये जो क्षमा और शांति है ये जाकर एक एक जगह दया को ढूंढेंगे। अब वो एक एक जगह क्या होगी, वो एक एक धर्म होगा। तो सबसे पहले ये लोग एक बौद्ध भिक्षु के यहाँ पहुंचते हैं, ठीक है, और वो वहां पर भिक्षा मांग रहा रहता है और ऐसा उसका सीन आता है, और फिर वहां पर वो कहता है क्या दें, तो बोलता है बेटा कुछ भी दे दो हमें तो पेट भरना है। तो उनने बोला नहीं हमारे पास तो बासा नवनीत पड़ा हुआ है पुराना दही कल का और तो कुछ नहीं है। उसने बोला बेटा कुछ नहीं, भिक्षुओं को तो कुछ भी चलता है, तुम्हारी दक्षिणा होनी चाहिए। तो फिर उसकी क्षमा बोलती देखो यहाँ पर तो खाने पीने का भी विवेक नहीं है, यहाँ मेरी दया नहीं हो सकती, जो लोग ऐसा मांस वगैरह भी खा लें उनके पास मेरी दया कैसे होगी, तो उनको बौद्ध धर्म में दया नहीं मिलती। ऐसे ही करते करते अद्वैत ब्रह्म में, फिर ऐसे करते करते वो श्वेतांबर में पहुंचते हैं, और ऐसे करते करते पूरा देखते और फिर आखिर थक जाते, बोलते दया तो कहीं नहीं मिल रही। मतलब वो सारे धर्मों में बोलते कि जब दया ही नहीं है तो धर्म किस बात का, करेक्ट। और फिर आखिरी में उनको दया मिलती है दिगंबर वीतरागी मुनिराज की परिणति में, और फिर वहां पर उन मुनिराज का वो समागम करके दया उनको मिलती है, और फिर वापस इस प्रबोध के पास पहुंचते हैं, युद्ध की रणनीति बनते फिर युद्ध होता है। बहुत सुंदर नाटक है। अब मुझे उसमें सिर्फ बताना तो ये था कि उसमें मुनिराज ने देखो क्या रूपक लिया, कि जैसे ही मोह मिथ्यात्व को अपना राज्य स्ट्रॉन्ग करना था, उसने किसका सहारा लिया, कुगुरु कुदेव का, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास तुरंत अपनी माया को भेज दिया, करेक्ट। तो ग्रहित मिथ्यात्व का फंक्शन क्या है, अग्रहित मिथ्यात्व को स्ट्रॉन्ग करना, दैट्स ऑल, इतना ही उसका फंक्शन है। तो ग्रहित मिथ्यात्व एक बहुत बड़ी चाल है जिसमें लोगों को लगता है कि सामने वाला जीव कितना मंदकशाई धर्म कर रहा है, देखो ये लोग नौ नौ दिन तक भोजन नहीं करते, देखो ये लोग ये नहीं करते, वो नहीं खाते, पैदल चलते हैं, नंगे पैर चलते हैं, उतने दूर तक यात्रा करने जाते हैं, ये सब कितनी अच्छी बातें लगती हैं, अप्रिशिएबल, बट एक्चुअली दैट वॉज अ कॉन्स्पिरेसी जो कि मिथ्यात्व ने अपने राज्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फेंकी थी, कि आप एक छोटे से बहकावे में, छलावे में आ जाओ, कि हाँ भैया दो चार अपन ने दिन नहीं खाया, अपन भूखे रह लिए तो अपना धर्म काफी है, अपन को मुंह मुंह को तोड़कर कुछ काम नहीं करना है। देखो डंडा भी नहीं टूटा हमारा और सांप भी मर गया, ये वाली कहावत आपने सुनी होगी, लाइक मिथ्यात्व को मरना भी नहीं पड़ा, और हम लोग की भैया हम लोग का धर्म भी हो गया। तो ये ग्रहित मिथ्यात्व एक बहुत बड़ा पॉइजन है एट प्रेजेंट टाइम, वेरी रेलेवेंट, हमको इससे बचना चाहिए। ये सभी रीसेंट एक आपने न्यूज पढ़ी होगी, एक बच्ची 13 साल की बच्ची, फॉर 60 डेज अराउंड ना, कितने दिनों तक उसने उपवास किया, एंड देन शी डाइड, शी पास्ड अवे, राइट। इट वाज लाइक एक्सट्रीम केस ऑफ ग्रेट मिथ्यात्व टुडे, शी डिड इट फॉर उसके घर में परिवार में सब सुख शांति हो, राइट। अब नहीं खाने से सुख शांति होती तो बेचारे गरीब सबसे ज्यादा अमीर होते उनको तो खाने ही नहीं मिलता, बट ये कोई लॉजिकली सोचता नहीं है, और बट हमें किसी ने बता दिया ये कर रहे हो, इट इज टू गुड, सबसे साता है, अरे कितना अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया, चार लोगों ने बोल दिया, चार लोग आकर आपकी प्रशंसा करके चले गए, एंड एवरीबॉडी इज अप्रिशिएटिंग यू, यू थिंक यू आर रियली डूइंग गुड वर्क, बट एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग इज लिटरली हर्टिंग योरसेल्फ, व्हाटएवर प्रेशियस दिस बर्थ यू गॉट बाय इनफाइनाइट वर्च्यूज दैट यू वुड हैव डन इन अपने जन्मों में, उसके कारण आपको शरीर मिला था और आपने उसको कैसे बहा दिया, करेक्ट। ग्रहित मिथ्यात्व इज वेरी रेलेवेंट इन दिस इंसाइड, इसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो इसकी तीन तरीके से हमने चर्चा करी, एक ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या चारित्र। ग्रहित मिथ्या दर्शन में कुगुरु कुदेव कुधर्म को मानना, ठीक है, हमारी छोटी छोटी मान्यताएं कुछ भी हो, कोई भी मान्यता, यदि मेरी मान्यता गंधोदक के हिसाब की भी ये है, देखो साइंटिफिक रीजन मैं आपको बताऊं, हमारी जनरली जो प्रतिमाएं होती हैं वो प्रतिमाएं धातु की होती है, पाषाण की होती है, राइट। नाउ आप जब धातु की प्रतिमा का प्रक्षाल करते हो, उसको वाटर से करते हो, तो वो चार्ज हो जाती है, उसमें नेगेटिव आयंस जनरेट होते हैं, राइट, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉन्स न्यूरॉन्स ये सब सुने ना आप लोगों ने साइंस की लैंग्वेज में, कोई भी धातु के लिए आपको चार्ज करना हो, ठीक है, तो उसमें आप यदि इतनी भावना के साथ ये जल आदि करके उसको फिर पहुंचते हैं हम, तो दैट मूर्ति वो नेगेटिव आयंस से चार्ज हो जाती है। नाउ नेगेटिव आयंस का और हमारे माइंड का, मैं साइंटिफिक बता रहा हूँ जो साइंस बोलती है, हमारे माइंड का बहुत गहरा संबंध है। नेगेटिव आयंस यदि हमारे आसपास होते हैं तो हमारी एनर्जी पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव थॉट्स हमको आते हैं, राइट। तो मंदिर में क्या होता है, आपने प्रक्षाल किया, उस टाइम बहुत सारे नेगेटिव आयंस जनरेट हुए, उसी टाइम जो प्रक्षाल करते हैं तो वहां पर कोई चवर भी ढोड़ता है, राइट, चवर चलाते हैं भगवान के गर्भगृह में, करेक्ट, वहां पर घंटा होता है तो वो भी बजता है, चबर से वो नेगेटिव आयंस पूरे मंदिर में फैलते हैं, करेक्ट। तो एक मंदिर का जो पूरा वातावरण है स्वच्छ हो जाता है, ठीक है, वह बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। इसलिए आप भगवान के गर्भगृह में अशुद्ध कपड़े पहन के नहीं जाते, इतनी पॉजिटिव एनर्जी वहां पर होती है भगवान की मूर्ति के आसपास। दैट्स अ साइंटिफिक। और ऐसा आपके ही भगवान की मूर्ति के साथ क्यों हो, अन्य लोगों के भगवान है वो भी साइंस तो उनके साथ भी वर्क करेगी इफ दे आर डूइंग इट, करेक्ट। हेलो, आप लोग सुन रहे हो ना? वो मूर्ति से जो चार्ज होकर पानी आया, दैट पानी जो हम गंधोदक जिसको कहते हैं, एक सुपर चार्ज। इसलिए आप एक नॉर्मल, जब हम जल को हाथ से सिर पे लगाते हैं, आप ये करके देखना, आप जल को सिर पर लगाना आपको नॉर्मल लगेगा, आप गंधोदक को सिर पे लगाना थोड़ा हैवी सा लगेगा। Does it happen ever? आपने कभी फील किया इसको? करना, आप कभी एक्सपेरिमेंट ये वाला भी करना।
वैसा नोटिस नहीं किया है।
बट यदि कोई धातु की मूर्ति है उसका गंधोदक यदि होता है, और यदि पुराना मंदिर है बहुत, उसका गंधोदक बहुत स्ट्रांग होता है, आप एक्चुअली सिर पे उसको थोड़ा, यू कैन एक्चुअली फील थोड़ा सा हैवी पानी से, ठीक है। हाँ, वो हो सकता है, मतलब थोड़े टाइम की बात, मतलब जहाँ बहुत ज्यादा रेगुलरली बहुत लोग दर्शन करने आते हो, बहुत प्रक्षाल होता हो, बहुत टाइम से होता हो, तो वो ऑटोमेटिकली इतनी चार्ज हो जाती है पॉजिटिव एनर्जी से मूर्ति, तो वो गंधोदक भी उतना चार्ज होता है। तो दैट्स अ सिंपल साइंटिफिक थिंग, गंधोदक, उसमें कुछ नहीं। गंधोदक को लगाकर यदि आपको अच्छे भाव आते हैं, दैट्स प्योरली साइंस, नथिंग मोर देन दैट। बट नाउ उसमें ग्रहित मिथ्यात्व हो जाए, ठीक है, आपको आएंगे पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, बट जैसे कि एक दवाई खाकर आपकी बॉडी में कुछ होता है, ऐसे गंधोदक लगाकर आपकी बॉडी में कुछ हो रहा है, तो आप दवाई की पूजा तो नहीं करने लग जाते ना, राइट? यू टेक दैट दवाई एज अ सॉल्यूशन टू सम प्रॉब्लम। ऐसे गंधोदक एक्ट एज अ, यू नो, एक जैसे आपने क्रीम लगाई चेहरे पर, ऐसे आपने गंधोदक का लेप किया। दैट्स वेरी नोबल पियर्स थिंग, बट इट शुड नॉट बी, यू नो, कनेक्टेड विद अवर बिलीफ कि यार गंधोदक है मतलब इससे मेरे रोग चले जाएंगे। उससे जाएंगे, जाने होंगे, तो दैट्स लाइक, उसमें कोई वंडर नहीं है चले जाए तो। बट भगवान के दर्शन और उनका प्रक्षाल सिर्फ इसलिए कि उनके गंधोदक से हमको एक दवाई मिलेगी और हम पवित्र हो जाएंगे, ये ग्रहित मिथ्यात्व आ जाता है। वेरी थिन लाइन, वेरी थिन लाइन बिटवीन ग्रहित मिथ्यात्व एंड अ वेरी रैशनल माइंड। सी, इज गंधोदक बेनिफिशियल? Yes, it is scientifically very, very beneficial. भगवान का दर्शन करना अच्छा होता है, very, very, very pious, very noble. भगवान की मूर्ति का स्पर्श very effective. But that is scientifically, that is a science. वो होना ही है, वो होगा. But उससे वो भगवान महान हो गए और उनकी वो मूर्ति चमत्कारी हो गई और उनका वो गंधोदक चमत्कारी हो गया, तो आपको भगवान की वितरागता तो पसंद नहीं आई, उनकी सर्वज्ञता तो अच्छी नहीं लगी। हाँ, उनकी जो पत्थर की मूर्ति हमने किसी खदान से खोद के निकाली थी, किसी अजैन ने जिसको नक्काशी से बनाया था, किसकी हमने प्रतिष्ठा कराकर इस मंदिर में बना दी, वो मूर्ति अचानक से महान हो गई, और जो एक्चुअल रियल में भगवान थे, जो वितरागी सर्वज्ञ थे, उनके गुण सारे हवा में उड़ गए। ये ग्रहित मिथ्यात्व, राइट? तो वेरी थिन लाइन। ऐसा भी नहीं है कि हम ये बोल रहे कि भगवान की मूर्ति के दर्शन से पुण्य बंध नहीं होता, बहुत अच्छा होता, ठीक है, बट इसके कारण वो भगवान की मूर्ति महान नहीं है। वो महान है तो अपनी वितरागता से, अपनी पवित्रता से, अपनी सर्वज्ञता से, ठीक है। तो यथार्थ साइंस का भी ज्ञान, यथार्थ संयोग का भी ज्ञान,
साइंटिफिकली आपने बोला कि ये जो गंधोदक है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज ना,
करेक्ट,
ओके, गुड, थैंक यू।
नो, इट इज, बट इसके कारण वो गंधोदक पूज्य हो जाए ऐसा नहीं है,
नहीं,
वो पूज्य इसलिए क्योंकि वो भगवान की वितरागी, भगवान के चरण को हम लोग तो उनको छूले, हमारा अहोभाग्य है, तो महिमा हमको उनकी वितरागता की आनी चाहिए,
अनंत चतुष्टय की आनी चाहिए, निर्मलता का, वो क्योंकि वो इतने निर्मल है तो वो उसको टच कर कर आया, तो वो भी पानी इतना निर्मल है, उसी लिए हम वो निर्मल होने के लिए सिर पर लगाते हैं, मेरा तो वैसा वो समझ
करे,
ना था।
करेक्ट, लेकिन अब इसके कारण वो गंधोदक वी यूज इट एज अ मेडिसिन और हम उसको बोलने लगे कि हाँ ये तो बहुत ज्यादा, मतलब भगवान के गंधोदक लगा दिया मतलब काफी है, ठीक है ना, भगवान का पता ना कौन से भगवान का गंधोदक लगाया, कौन सी मूर्ति है, कौन से भगवान विराजमान है, कुछ नहीं पता, एंड अकेली ऐसे कर लिया तो देन दैट फॉल्स अंडर ग्रहित मिथ्यात्व बिकॉज यू हैव क्रिएटेड अ न्यू बिलीफ, न्यू सिस्टम ऑफ बिलीफ, आपने एक नई निर्जरा तत्व संबंधी, बंद तत्व संबंधी भूल स्टार्ट कर दी।
परंतु यहाँ अनुभव जी, आई फील के कई प्रथमानुयोग की स्टोरीज होती है, वहाँ से लोग ये पकड़ लेते हैं ना कि
करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब ना प्रथमानुयोग की स्टोरीज इज फॉर बिगिनर्स, लाइक कोई धर्म में नहीं लगता उसको स्टोरीज पढ़ने में मजा आता है, तो उसको ऐसे छकाने के लिए, उसको थोड़ा इंटरेस्ट लाने के लिए ऐसा भी होता है कि भाई मंदिर तक तो आए, भली गंधोदक लगाने के लिए आए, उसना उसका प्रयोजन था। अब मैंने स्टोरीज तो 10 साल पहले पढ़ ली थी, मैना सुंदरी की पढ़ ली मैंने, ठीक है, अब 10 साल से मैं रोज भगवान के दर्शन कर रहा हूँ और 10 साल बाद भी मैं गंधोदक से आगे नहीं बढ़ू और सोचू नहीं कि भगवान के दर्शन करता हूँ वितरागी सर्वज्ञ कैसे है, देन इट्स अ ग्रेट मिथ्यात्व। एट फर्स्ट स्टेज तो यू डोंट नो ना, आपको पता ही नहीं है क्या है, तो एट फर्स्ट तो आप यदि क्यूरियोसिटी से भी मंदिर के अंदर घुसे, कैसे भी घुसे, आप इसीलिए भी घुसे कि भगवान पार्श्वनाथ भगवान है, शांति और चमत्कारी मूर्ति है, आप आए ना, दैट्स अ बिग स्टेप, यू एंटर्ड इनटू दिस प्रमाइसेस, दैट्स रियली अ बिग स्टेप, यहां तक ग्रेट मिथ्यात्व स्टार्ट नहीं हुआ अभी तो आपको कोई, क्योंकि मिथ्यात्व इतना भयंकर है, हम उसमें ग्रेट अग्रेट क्या भेद करें, यू डिडंट नो अरेंज भगवान ओनली राइट नाउ, बट नाउ अब आ गए, आपको सब लगा कि ये सही है ये गलत है ऐसे है वैसे है, सब कुछ पता पड़ गया आपको, एंड अब आपको 4-4, 5-5 साल इस मंदिर में आते हो गए और आप तब भी गंधोदक तो रोज लगाओ और भगवान के स्वरूप का विचार नहीं करो, ये ग्रहित मिथ्यात्व से चल रहा है हमारा, क्योंकि हमने भगवान को सिर्फ एक डॉक्टर से बड़ा कुछ नहीं माना, जैसे गंदे रोगों का डॉक्टर, जैसे कि हमें कुछ पेट खराब हो गया तो डॉक्टर के पास गए तो ही इज एक्चुअली क्यूरिंग हमारी गंदी गंदे से रोक लिया, ऐसे भगवान के पास चले, भगवान पेट दुख रहा है गंधोदक दे दो, तो हमने भगवान को क्या मान रखा है, मतलब तो वो ग्रेट मिथ्यात्व। इसको एक पंडित भागचंद जी छांझेर हुए, गुरुदेव श्री को इनका ग्रंथ सत्ता स्वरूप बहुत अच्छा लगता था, सुंदर से छपा हुआ है सत्ता स्वरूप, उसमें उन्होंने लिखा, सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप का ज्ञान नहीं होना और फिर बोलना कि मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु को जानता हूं, ये जैनियों के ग्रहित मिथ्यात्व का लक्षण है, मतलब विदाउट नोइंग यू आर गोइंग डाउन, लाइक तो फिर ऐसे आप किसी के भी सामने सिर पटक लेते, भगवान सच्चे देव शास्त्र गुरु के सामने आने की क्या जरूरत थी, यहाँ आए हो तो फिर आप तक जान के आते तो कुछ काम का था, राइट? तो ये अग्रहित मिथ्यात्व का सबसे पहले मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या दर्शन का स्वरूप कि इसमें सच्चे देव शास्त्र गुरु का यथार्थ स्वरूप न जानकर उनमें जो भी कल्पना की जाती है वो सब कहा जाती है ग्रहित मिथ्या दर्शन में। फिर हम ग्रहित मिथ्या ज्ञान पर आए और उस पर हमने पढ़ा कि कुछ भी दुनिया भर की 1000 बातें हम पढ़ लें और उन बातों को एक्चुअली पढ़ने से बिना परीक्षा किए अपना हित जानने लगे, जैसे कि बाइबल होता है, लोग कहते हैं बाइबल पढ़ लिया, कुरान पढ़ ली, तो एक बार कुरान पढ़ ली तो बस जिंदगी सार्थक हो गई, किसी ने वेदों का अभ्यास कर लिया तो देवों की बुक है वेद तो उसका जीवन हो गया, तो ऐसे हमको बताया जाता है कि आप ये पढ़ लो तो ये हो जाएगा, ये पढ़ लो तो ये हो जाएगा, एक बार भक्तांबर का 48 श्लोक है, आप एक बार पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। नाउ यू थिंक के काम हो जाएगा, ठीक है, बट द एक्चुअल पोजीशन इज कि आपको ना संस्कृत आती है ना भक्तांबर का अर्थ पता है ना उसमें किसकी स्तुति करी गई है पता है ना उसमें कौन से भाव है ये पता है, फॉर द सेक ऑफ रीडिंग और रीडिंग इट तो उससे हमें कोई फल तो नहीं लगता, उससे उल्टा हमें दोष और लगता है, क्योंकि अब हमने एक उसको एक अपने मिथ्यात्व का स्रोत बना लिया, जब भी कुछ हो हम क्या करेंगे भक्तांबर का पाठ शुरू कर देंगे, लेट्स गुड, आप रोगे इससे अच्छा आपने भक्तांबर का पाठ करना शुरू कर लिया, बट दैट्स फॉर बिगिनर्स। अब तो आपको 4 साल हो गए ना पढ़ते हुए, until you're not trying to make an effort to understand it, that's the problem. That's really somewhere problem. That you're not interested in knowing that at all, or you're just, you know, आपको सिर्फ अपना पाप का उदय मिटाना है, आपको पुण्य के उदय से कोई परहेज नहीं, आपको कर्मों से कोई बुराई नहीं है, सिर्फ पाप के कर्म से बुराई है. That's a great mistake. ठीक है. और आखिरी में हमने ग्रहित मिथ्या चारित्र की बात करी थी, और उसमें जितनी भी क्रियाएं उल्टी सीधी होती है, वो सारी क्रियाएं हमारे सारा कंडा, ये सब हमारा ग्रहित मिथ्या चारित्र में आता है. ठीक है. इसमें आप छोटी छोटी क्रियाओं को भी ले सकते हैं, जिनके बिना अक्सर लड़ाई होती तक देख ली जाती है. ठीक है. तो पंचामृत अभिषेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर लोग लड़ जाएंगे, करेक्ट, क्योंकि उनको उस क्रिया से क्या लगता है, धर्म लगता है. बट एक्चुअल में पंचामृत अभिषेक होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दैट्स नॉट इवन अ डिबेट. क्या उस पंचामृत अभिषेक के होने पर, उस क्रिया करने से आपके मिथ्यात्व में कुछ कमी आ रही है? नहीं आ रही. तो क्या हो रहा है कि मुझे तो लग रहा है ना, पंचामृत अभिषेक किया मतलब मैंने महान पुण्य का बंद किया, मतलब आपको पुण्य चाहिए ना, बंद तत्व संबंधी भूल हो गई, मतलब आपका ग्रहित मिथ्यात्व हो गया पंचामृत अभिषेक करने की क्रिया करने का परिणाम, राइट. तो ऐसे करके ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या चारित्र का हमने स्वरूप वहां पर पढ़ा था, और आखिरी का छंद बचा था ते सब मिथ्या चारित्र त्याग. ऐसे करके इन सारे मिथ्या चारित्रों को, ग्रहित को, अग्रहित को, सारे मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञानों को हम नष्ट कर दें और अपने आत्मा के हित के पंथ में लगें. ऐसा करके उन्होंने सेकंड ढाल को यहाँ पर कंक्लूड किया. ठीक है. एनी क्वेश्चन फ्रॉम ग्रहित एंड अग्रहित मिथ्यात्व? किसी को भी कोई क्वेश्चन?
नहीं.
पक्का यहाँ तक? ठीक है. वी ट्राइड रिवाइजिंग टुडे थोड़ा थोड़ा. फाइन. एनी डाउट एनीबडी हैज? ओके. सो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से सेकेंड ढाल को कंप्लीट करके थर्ड ढाल पर प्रोसीड करने की कोशिश करेंगे. सेकेंड ढाल की गुरुदेव श्री के प्रवचन के नोट आई एम येट टू गिव यू ऑल. हम उसके बाद अब थर्ड ढाल से गुरुदेव श्री का प्रवचन स्टार्ट करके थर्ड ढाल स्टार्ट करेंगे. ठीक है. किसी को कोई भी डाउट किसी भी पहली और दूसरी ढाल में हो तो प्लीज आप कभी भी पूछ सकते हैं. आप जब भी पूछेंगे हम कोशिश करेंगे कि हम रिजॉल्व कर पाएंगे. ठीक है. आज के लिए समय हो गया, अपन कंक्लूड करते हैं. मानस प्लीज.
जावानी के ज्ञान से सूचे रोका लो, शोभानी मस्तकन मुँह सजा देता हूँ. दो नौ बार नमो का मंत्र.